نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مصیبتوں سے کیسے نپٹیں؟ ہم اس بک میں الحمدللہ سب سے پہلے دیکھ چکے کہ ہم پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. مصیبتوں کے آنے کے دو اسباب پڑے تھے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال کر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے, اس کے ایمان کو پختہ کرتا ہے, تو جنت اس کو مل جاتی ہے. دوسری وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں میں انوالو جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت گندے ہو گئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یاد رکھیے, ہمارے گناہوں پہ دنیا میں مصیبتوں کا آنا اللہ کے رحم اور اس کے فضل کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گندا نہیں رہنے دیتی, وہ بچہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یعنی گندگی لاتا ہے, کرتا ہے, پھیلاتا ہے, لیکن ماں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کو صاف کرتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا ٹاپک دیکھا تھا کہ مصیبتیں ابھی آئیں تو نہیں ہیں لیکن اگر آئیں گی تو مشکل تو پڑے گی, تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے بچا لیں. اس میں الحمدللہ ہم نے 18 پوائنٹس دیکھے تھے اور ہر پوائنٹ کے آگے پھر ڈیٹیلز دیکھی تھی. آپ سب کو یاد ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اوپر ان ان گناہوں پہ مشکلات آ سکتی ہیں, تو تقریباً ہم نے اس کے 28 پوائنٹس دیکھے تھے, 28 پوائنٹ تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اب جو چیز شروع کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے تو اب کیا کریں. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ایسے وقت میں انسان اپنے ہوش حواس قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے خیر کا بناتا ہے. اس میں جو پوائنٹس پڑھے ہیں اس میں پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ مصیبتوں کے حتمی طور پر آنے کا اعتقاد رکھیں. مصیبت تو آنی ہے تو دعا کریں جو آئے وہ ٹل جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ایمان پختہ کر دے. پھر دوسری دیکھی تھی کہ مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف پلٹے گی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسری پھر ہم نے پڑھی تھی کہ ہر مصیبت تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے, تو پھر ہم کیوں اس مشکل میں پڑھے؟ اللہ سے پیار ہے, اس کی طرف سے جو بھی چیز ہے ہمیں اس کو ویلکم کہنا ہے. چوتھی چیز یہ تھی تقدیر پہ راضی ہو جائے. جب مشکل آئے صبر آتا ہی تب ہے, خوشی ملتی تب ہے جب ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں. پھر پانچواں پوائنٹ ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ مصیبت میں خیر ہونے کی امید رکھنا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بھی ہے اور آسان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اس کا اپوزٹ بھی تھا. پھر چھٹا پوائنٹ دیکھا تھا کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندر جو چھپے ہوئے فوائد ہوتے ہیں اس کو نظر میں رکھیں. تو پھر جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کھانے میں, ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا, پر ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ بہت ہے, بعد میں جسم کو اس سے انرجی ملے گی, تو وہی چیز اس میں بھی رکھ لیں. ساتواں پوائنٹ دیکھا تھا کہ ہر مصیبت پر ملنے والے اجر و ثواب کو پیش نظر رکھنا, یعنی مصیبت کے اندر جو اجر مل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی 24 گھنٹے نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا, لیکن آپ کو آتا ہے کہ مصیبت ہو آئی ہوئی, بیماری آئی ہوئی ہے, تکلیف آئی ہوئی ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں, تو پورا وقت عبادت میں. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص برے دنوں میں, تکلیف کے دن ہیں, بیماری ہیں, آزمائش ہے, غربت ہے, کوئی بھی زندگی میں کوئی گم گیا ہے, آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی جتنی دیر ایک بندہ کسی آزمائش میں رہتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا مصلی بچھا کے ہم بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر؟ تو یہ جو چیز ہے کہ ہمیں اس پہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے جو صبر ملے گا یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. پھر آٹھویں چیز ہم نے دیکھی تھی صبر, کہ جب بھی تکلیف آئے گی تو صبر تو کرنا پڑے گا, اور اس میں صبر پہ اتنی ڈیٹیلز ہم نے دیکھی ہیں. آج کے بھی سبق میں میرا خیال ہے کوئی 10-15 صفحے صرف صبر پہ اور استغفار پہ, تو شاید 20-25 صفحے ہیں آج کے سیشن میں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو اندازہ لگائیں گے. تو اس کے بعد آج ہم جو نواں ٹاپک شروع کریں گے وہ کیا ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کو طلب کرنا. اس کے اندر کچھ چیزیں آئیے دیکھتے ہیں. پیج نمبر 307 پوائنٹ نمبر 9 ہے. کس چیز کا؟ مصیبت آ چکی ہے تو کیا کیجئے؟ اللہ سے مدد طلب کیجئے. سورۃ بقرہ 45 پیچھے بھی ہم دیکھ چکے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تم صبر اور نماز کے سب مدد طلب کرو, بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں پر یقیناً بہت بھاری ہے. کیا پتہ چلا نماز پڑھنی آسان کس کو لگے گی؟ جو صبر کرے گا. اور آپ دیکھ لیجئے لوگ گھنٹوں کھڑے رہیں گے, نماز کی بات کہیں گے, چل رہے ہیں, اچھا میں اب جا رہی ہوں, اچھا گھر جا کے پڑھوں گی, اچھا بچوں کو لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو نماز اللہ کی توفیق سے آسان ہوتی ہے. फिर इसी तरह सूरह बकरा 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अब ये आयतें तो हमने पहले भी पढ़ी, हमें पता है कि नमाज में अल्लाह ताला से मदद कैसे तलब की जाती है। फिर इसमें इन्होंने चार मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल लिखे हैं, हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्क़लानी, शेख सादी, अलामा आलूसी और सैयद कुतुब। ये चारों की तफसीरें भी मौजूद हैं इस आयत की रोशनी में। उन्होंने लिखा है जिस सारी बात का खुलासा क्या है कि जब तकलीफ़ आए तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, दुआ मांगे, आजजी करे, इंकसारी करे, इस बात का यकीन रखे कि अल्लाह के सिवा कोई मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर ही नहीं सकता, और ताल्लुक जोड़े। फिर इसके बाद आप देखें तो पेज 310 पे कुछ मिसालें हैं कि अंबिया कराम ने मुख्तलिफ औकात में जब उनको आजमाइशों में डाला गया तो कैसे अल्लाह ताला से मदद मांगी। सबसे पहले जो रिवायत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इमाम अहमद ने हज़रत सुहैब से नकल किया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो चुपके से कुछ फरमाते, हम उसको नहीं समझ सकते थे और आप ना ही हमें बताते। कहते हैं एक दिन मैंने पूछ लिया, सहाबी कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि आप ये क्या करते हैं। देखिए ना, नबी पास हो तो बंदे के तो हिरस ही होगी ना कि हर मसला पूछ ले। जैसे आज कोई इल्म वाला आए तो हम उसे हर मसला सीखना चाहते हैं ना, लेकिन नबी सल्लम का तो अपना वजूद खुद लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत थी। तो ये सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी अब क्या करते हैं, यानी अल्लाह के नबी समझ गए उसका इशारा। उस पर आपने फरमाया बेशक मुझे अंबिया में से एक नबी याद आए जिन्हें अपनी कौम से असाकर, असाकर कहते लश्कर, लश्कर दिए गए थे, तो उन्होंने कहा इनका मुकाबला कौन कर सकता है या इनके सामने कौन ठहर सकता है, या इसी किस्म की कोई बात कही, रावी को शक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की, अपनी कौम के लिए तीन बातों में से एक पसंद कर लीजिए, मैं इन पर और इनके अलावा कोई दुश्मन मुसल्लत कर दूँ, या इनको भूख के अज़ाब में मुबतला कर दूँ, या मौत दे दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस नबी ने अपनी कौम से मशवरा किया, तो उन्होंने अर्ज़ किया आप अल्लाह के नबी हैं, हम इस ये मामला यानी आपको सौंपते हैं, आप हमारे लिए चुन लीजिए। समझ आई, यानी तीन में से एक चॉइस लेनी है। तो कौम ने नबी पर ट्रस्ट किया कि आप जो मुनासिब समझते हैं वो कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर वो नबी नमाज में खड़े हो गए। फिर आपने फरमाया जब भी इन्हें घबराहट होती तो वह नमाज की तरफ लपका करते थे। फिर आपने फरमाया कि उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह ताला से अर्ज़ किया इनके अलावा कोई दुश्मन इन पर गालिब हो तो नहीं, या भूख से हलाक हो तो नहीं तो मौत। यानी सबसे पहले दुश्मन का गलबा चूज़ किया, वो ना हुआ तो फिर भूख और फिर मौत। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया तो अल्लाह ने इन पर तीन दिन मौत मुसल्लत कर दी तो इनमें 70,000 आदमी मर गए। मेरी सरगोशी जो तुम देखते हो बिला शुबा इसमें मैं कहता हूँ। अब ये है अल्फाज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सरगोशियों में अल्लाह ताला से कहा करते थे, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं आप ही की नुसरत और रियानत के साथ जंग करता हूँ और आप ही की मदद के साथ हमला करता हूँ, और मुझ में अल्लाह की मदद के बगैर ना कुछ हासिल करने की सकत है और ना किसी चीज़ से बचने की हिम्मत है। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिका उकातिलु व बिका उसाविलु वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। क्या पता चला हम भी ये दुआ याद कर सकते हैं। अब हम लड़ तो नहीं रहे लेकिन हम अल्लाह के रास्ते में तो निकलते हैं ना, तो सुबह घर से निकलते हैं ना तो यही कहा करें कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अल्लाह, कोई ताकत मुझे घर से निकाल नहीं सकती थी इस वक्त तेरी ताकत के सिवा, कोई नेकी की तौफीक नहीं दे सकता आपके सिवा। तो इस एक हदीस से दो बातें पता चली कि नबी सल्लम खुद भी और पिछले अंबिया कराम भी जब भी उन पर कोई मुश्किल आती थी तो वो सब्र के साथ अल्लाह से मदद तलब करते थे, और सहाबा कराम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताते हैं कि जब इनको घबराहट होती थी तो आप नमाज की तरफ भागते थे। तो ये मेरे आपके लिए एक अमल है। देखिए हम ऐसे वक्त में क्या करते हैं, उसको फ़ोन कर, उसको बता, अब शोहर को ढूंढ रहे हैं कौन है, माँ की तरह है, बहन से फ़ोन कर रहे हैं। आज जितना कम्युनिकेशन के वेज आम हो गए ना, फ़ोन है, मैसेजेस है, नेट है, ईमेल है, उतना आप देखिए कि अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो गए। आज लोगों से रबते के लिए तो नेटवर्क हैं बड़े बड़े, मिनटों में, सेकंडों में, एक क्लिक पे हज़ारों को आप परेशान कर दें या हज़ारों को खुश कर दें, उतना अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह के लिए तो सेलफोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई हॉटलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो इजाज साला कई बार या नीफा इन्नी करीब। तो लिहाजा इन चीज़ों को एक ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें, लेकिन जब मुश्किल आए तो वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला। दूसरा वाक़िया खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम का नमाज में मदद मांगना। ये वही बात है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक जाबिर हुक्मरान ने हज़रत इब्राहिम की बीवी हज़रत सारा से बुराई करना चाहा, यानी हज़रत इब्राहिम की अहलिया को बुरे इरादे से अपने यहाँ रोका, तो खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम नमाज की तरफ मुतवज्जे हुए तो अल्लाह ने बदबख्त काफिर की तदबीर पलट दी। पीछे याद है ना वाक्या तवील से पढ़ा था, तो वो सब कुछ क्यों हुआ कि बीवी के साथ वो शख्स बुराई करना चाह रहा है और शौहर उस वक़्त नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए कि मज़बूत सहारा अल्लाह का है। अमूमन मैंने देखा लोग किस चीज़ पे मान करते हैं, वो मेरा सदर साहब से मेरा रब्ता है, वो मेयर साहब मुझे जानते हैं और वो सफ़ीर साहब से मेरे बड़े करीबी ताल्लुक है, थानेदार बहुत है, ये हैं वो हैं, ये सारे कौन हैं? वल्लाह ही ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम ये तो मोहरे भी नहीं है, ये तो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने लिए कोई खैर नहीं ले सकते, दूसरों को कहाँ देंगे। अब्दुल्ला बहावलपुरी का नाम आपने सुना होगा, दुनिया से जा चुके, बड़े सादा मंश आलिम थे प्रोफेसर, लेकिन कहते हैं कि कॉलेज में भी धोती पहन के जाते थे। कभी आपको नेट पे तो मेरा नहीं ख्याल होंगी, टेप्स होती थी पहले, ये वो शख्स हैं कि बहुत इब्तदाई दिनों में मैंने इनकी कैसेट सुनी और वाकई इनके लफ्ज़ों से ईमान छलकता था। तो उसमें से एक में ये अपना वाक़या सुनाते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि घर बैठे थे तो पुलिस आ गई और मेरे बेटे को ले गई, ना उसने कुछ किया ना कराया, पुलिस आई लेके चली गई, मुझे समझ नहीं काजी इस पे कोई मुकदमा बन गया। अब कहते हैं कि जब मेरे लिए ये अनहोनी बात थी तो फिर समझ ना आई कि करूँ क्या, मैं किसको ढूंढूं, मेरा तो काम ही है कि घर से मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से निकलता हूँ मस्जिद गुजारता हूँ, ना मैंने कभी किसी से राह रस्म बढ़ाई और ना, और यकीन करें जितना वक्त हम दूसरों से राह रस्म बढ़ाने में लगा रहे होते हैं ना, अगर इतना कुर्ब अल्लाह का पा लें तो हमें उन मोहरों की ज़रूरत ही नहीं, बाईपास कर दीजिए उन लोगों को। खैर कहते हैं कि मैं जायनमाज पे खड़ा हुआ, मैंने कहा अल्लाह तू जानता है कि मेरी तो सारी दोस्ती तेरे साथ है, मेरा तो ताल्लुक मेरा मान सबसे, ना मेरी किसी थानेदार से दोस्ती ना कोई SP से फलां से फलां से, तू बता मैं क्या करूँ। यानी उनके जो लफ्ज़ थे ना वो असल में आपको बता रही हूँ कि जब अल्लाह से दोस्तियाँ की होती हैं ना तो मुश्किलात में अल्लाह याद आता है। कहते हैं मैंने इतनी आहोजारी की अल्लाह के आगे कि थोड़ी देर गुजरी तो मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हो तुमको गलती लग गई थी, ये था वो, यानी उन्होंने छोड़ दिया। तो हमेशा अपने आप से पूछिए मेरा सबसे ज़्यादा ताल्लुक किस हस्ती से है, जिस हस्ती से ना बस वो असल है। और आप देखिए एक मुल्क का बादशाह भी आपके बस में आ गया, हालांकि कोई नहीं आते, ये मेरा ईमान है, वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे ईमान था, कोई काम नहीं आता, सिर्फ वो काम आएगा जिसको जिससे अल्लाह काम लेगा। तो हम मेन डोर क्यों ना, जैसे आप हमारे घरों में ये बटन है ना, आप यहाँ से जितने मर्जी बटन खोलें बिजली नहीं आएगी, क्यों पता चला पीछे से मेन स्विच बंद है, तो अल्लाह से ताल्लुक मेन स्विच है। ये छोटे छोटे लोग मोहरे हैं, जरूरत पड़ती है अगर कोई खुद खुशी से करता है आगे आता है बड़ी खुशी की बात है, लेकिन याद रखिए अगर पीछे से मेन कंट्रोल आपके हाथ में आ गया इनके सब के दिल अल्लाह के हुक्म से उसी काम पे आ जाएंगे। फिर इसी तरह आप देखिए जो अगला वाक्या है वो नबी सल्लम का नमाज के साथ तलब करना मदद, इसके बारे में तो गवाही मौजूद है, इज़ा हज़बहु अमरुन सल्लो, जब भी कोई अहम मामला दरपेश होता या गम पहुंचता तो अल्लाह के नबी सल्लम नमाज पढ़ते थे। सहाबी कहते हैं हमने बदर में आपको देखा, पीछे हम सुन चुके हैं, सारों को अपनी अपनी जगहों पे साइन किया और खुद आप परीश पे चले गए और वहाँ खड़े होकर सारे लश्कर को देख रहे थे और दुआ कर रहे थे। आज भी वहाँ मस्जिद अरीश बनी हुई है, अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ लिखी हुई है ये बात, ये वो जगह है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर आहोजारी कर रहे थे और इतना इल्हा कर रहे थे कि अबू बकर कहते हैं कि बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से चादर नीचे गिर रही थी। आखिर मैंने कहा अल्लाह के नबी आप इतना ना रोएं, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, और आप देखिए कि फतह हो गई। फिर आप देखिए गज़वा खंदक के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मांगना था पढ़ के देखिएगा, बहुत ही ईमान अफरोज वाक्य, ठंडी हवाओं की जंग थी, सर्दी इतनी शदीद थी कि अल्लाह के नबी उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा लड़ते थे, देखिए अल्लाह के नबी को कोई लड़ने नहीं देता था, कहते थे आप पीछे रहें आप हमें गाइड करें आप हमसे काम करवाएं, क्योंकि अगर आप आगे और खुदा न खास्ता आप किसी की गोली में आगे जद में तो हमारा पूरा एक वो कहना चाहिए कि एक ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी मैदान जंग में एक साइड पर रह कर दुआएं भी करते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे, और बेहतरीन लीडरशिप यही होती है, लोगों को काम करने दिया जाए और उनकी खामियों कमियों बेशियों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी सलाह कर दी जाए। जो बंदा खुद हर काम में कूद पड़ता है फिर याद रखिए उसके साथ टीम कभी नहीं बनती। फिर बाद लोग कहते हैं हमारे साथ तो कोई लगता ही नहीं है, हमें तो किसी का साथ ही नहीं मिलता। तो बहरहाल ये एक साइड इशू था, लोग जंग कर रहे हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर उतने में आपने कहा तुम में से कोई है जो दुश्मन की खबर लेकर आए, बड़ा खूबसूरत वाक्य। आपने कहा सहाबा से पूछ, सख्त सर्दी है। अब ये सर्दी क्या होगी, आज तो शायद -3 है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सर्दी थी, और आप कहते सहराओं की गर्मी भी बड़ी सख्त होती है और सर्दी भी बहुत सख्त है, और हमारे पास इतने नरम गरम कपड़े हैं, उनके पास तो ये भी नहीं, हमारी तो गाड़ियां ही इतनी हीटेड हैं, वो तो घोड़ों पे जाते थे। तो आपने कहा कोई ऐसा है शख्स के जो जाके दुश्मन की खबर लेकर आए तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा। तो भूख भी थी, सर्दी भी थी, खौफ भी था, ये तीन चीजें मिल जाएं तो टांगे तो कांपने लगती हैं, कोई उठ ही नहीं रहा। इतने में आप कहते हैं कि हजरत खुजैफा, क्या ख्याल है खुजैफा, तुम ये काम करोगे? बस नाम आने की देर थी। जी अल्लाह के नबी। और हजरत खुजैफा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से रुख्सत हुआ, मैं अपने घोड़े पे बैठ के बाहर सर्दी में गया, और वल्ला ही मुझे ऐसे लग रहा था मेरे इर्द गिर्द किसी ने मोटा कंबल डाल दिया। वहां बैठे हुए अंदर ठंड लग रही थी, लेकिन खुली जगह पे गया, दुश्मन का खिसार किया, देखा, सब कुछ किया, लेकिन वहां मुझे ठंड नहीं लगी, हत्ता कि मैं वापस आ गया। याद रखिए ये बात, अपने दिल पे लिख लें, दीन के रास्ते में आप अगर निकले, लोग आप पे रहम खाए, हाय बेचारे, चैन कोई नहीं, सुबह कोई नहीं, शाम उधर, रात इधर, खाते कैसे, पकाते कैसे, ये कैसे, घर कैसे, बच्चे का, ये लोग कहते हैं, और आप हजरत खुजैफा वाली गवाही देंगे कि अल्लाह जितने सुकून में मैं हूं, ये तो इतना कुछ कर करा के भी इतने मुतमईन नहीं है। तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सुकून है, खुशी है। तो ये वाकया भी आपको ये सिखाता है कि अल्लाह के नबी ने उस वक्त नमाज से मदद तलब की थी। फिर इसी तरह से चौथा वाक्य इब्ने अब्बास का नमाज के जरिए मदद तलब करने का, रेफरेंस सारे लिखे हैं इसलिए मैं दोहराती नहीं हूँ। सफर में थे हजरत इब्ने अब्बास, और अल्लाह ताला ने पीछे से उनको खबर दिलवाई कि इनके भाई कुसुम, उनका नाम था, उनका इंतकाल हो गया। खबर देने वाला कहता है कि मैंने देखा कि इस खबर को सुना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, फिर अपने रास्ते से जरा हटे, सवारी को बिठाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और तशहुद में बड़ी देर तक बैठे रहे, और उस वक्त यही आयत पढ़ते रहे, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाह मा साबरीन। फिर वापस आए। आप देखिए हम ऐसे वक्त में तो पता नहीं क्या कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, या कुछ बेहोश हो जाता है, कोई कुछ करता है, तो अल्लाह ना करे हमें ऐसी खबरें आए। अल्लाह हम सब के भाइयों की जिंदगियों की खबरें हमें दे, आफियत की दे, मौत की, बीमारियों, तकलीफों का कोई ऐसी खबर हमें ना दे। लेकिन आप देखिए कि उनको सफर में ऐसी खबर मिल रही है, और सफर में तो इंसान वैसे ही बहुत अपने आप को बेबस महसूस कर रहा होता है, तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर ठहरा हुआ है। तो ये नवा पॉइंट आपको मुझे क्या दे रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इब्ने अब्बास ने किया, हुजैफा के मामले को पढ़ा, तो मेरा आपका क्या मामला है? दिल की तख्ती पे लिख लें। पहली तो बात है कि अल्लाह को तकलीफ देना, लेकिन आएंगी, सीधी सी बात है, हतमी ये बात है कि आनी है, तो तैयार है हर वक्त वर्स्ट बदतरीन खबर सुनने को तैयार रहा करें। मैं आपको यकीन करें पत्ते की बात बताती हूँ, आप अपने, उम्मीद कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, उम्मीद बेहतरीन काम की रखिए, लेकिन अगर कोई आ जाए तो तैयार हैं बदतरीन भी। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिलूला, चोट पड़ते ही तो सब्र होता है। जो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला को वो प्यारा भी लगता है। फिर इसके बाद 10वां पॉइंट अब हमारे सामने है, बहुत ज्यादा इस्तगफार करना। इस पर हमने पीछे बहुत बात की, और आप अगर देखें तो इस बुक में पेज 320 से शुरू होकर ये टॉपिक तकरीबन, मैं आपको पेजेस बताती हूँ ताकि आप इनके नंबर नोट कर लें, और कभी भी आपको कहीं इस्तगफार के मौजू पे दर्स देना हो ना, या कहीं बात करनी हो, या मैं कहती हूँ इन पेजेस को अपने बच्चों से ऐसे ही छेड़ें, क्योंकि इसमें 4 इतने खूबसूरत वाक्यात हैं। वही पीछे पढ़े थे, किफल का वाक्य है, फिर 99 लोगों के कत्ल का वाक्य है, फिर इसी तरह से एक नया वाक्य भी है अबू तवील शतब का, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये सारा कुछ आप अपने बच्चों के साथ ऐसे ही बैठ के ना शेयर किया करें। स्टोरीज अच्छी लगती हैं, जैसे लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो कभी बैठ के हम इन स्टोरीज को पढ़ लें, ये भी तो सच्चे वाक्यात हैं, कहानियों की तौर पे ना। तो ये चीज़ें आपको मुझे हकीकत में अपने गुनाहों पे फिक्र दिलाएंगी। पेज नंबर 320 से लेकर ये मौजू पूरा होता है 353 पे, क्या पता चला 33 सफ़ों पे सिर्फ इस्तग़फ़ार है। और नोट कर लीजिए, जो पढ़ते पढ़ाते हैं आपको इस्तग़फ़ार के बारे में अगर कहीं बात करनी, ये 33 पेजेस आप घंटे डेढ़ में बड़े आराम से लोगों से शेयर कर सकते हैं। वाक़यात वही, और इस्तग़फ़ार की बात पीछे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। पहली हदीस पढ़ लीजिए, आपने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह से अपने गुनाहों की कसरत से माफ़ी तलब की, और जहन में रखिए कसरत से माफ़ी मांगना ज़ुबान से नहीं है, एहसास नदामत, पसीनों पसीने हो जाए, शर्मसार हो, आप देखिए कि हम किसी जगह खड़े हों और एकदम किसी के सामने हमारा कोई पोल खुल जाए, तो क्या हम हंसते हंसते कहेंगे ओ हो क्या हो गया? नहीं, शर्म आती है, सर डूबता है, शर्मिंदगी होती है। जब बंदा अल्लाह के दर में खड़ा हो तो उसको एहसास हो रहा हो कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आपने फरमाया जो अपने गुनाहों की कसरत से माफ़ी तलब करेगा अल्लाह ताला हर गम से छुटकारा। पहली चीज़ सोचें हाँ, क्या क्या गम है। गम तो वो होता है जिसने दिल को बांधा होता है ना, हर गम से निजात, हर मुश्किल से निकलने की राह, और उससे वहाँ से रिस्क आता है जहाँ से उसका गुमान नहीं होता। सच बताएं ये तीन ही तो हमारे मसले हैं। हदीस आपके सामने लिखी हुई है पेज 321 के सबसे ऊपर, मन अक्सर मिन अल इस्तिग़फ़ारी जाल अल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम मिन फ़राजा व मिन कुल्ली दीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। आपको मुझे फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक हदीस में मल लज़िम अल इस्तिग़फ़ार के लफ्ज़ है, तो कसरत से अपना विरद बनाए। लेकिन वही बात है, ये ज़ुबान का विरद नहीं होगा, ये दिल का विरद होगा, ये अक़ल का विरद होगा शर्मिंदगी के साथ। फिर इसमें हज़रत हसन बसरी का वही वाक़या कि हर आने वाले को इलाज में कहते हैं इस्तग़फ़ार करो, और सूरह नूह की आयतें फिर पढ़ते हैं कि तुम्हें कुरान में नहीं याद ये बात कि फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलु समा अलैकुम इदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो क्या पता चला कि इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। आप एक वाक्य पढ़िए, इसमें बहुत प्यारा है, ये पहले नहीं मैंने आपसे शेयर किया, पेज 324 पे इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं, सलफ कहते हैं पुराने लोग, बुजुर्ग बड़े जो लोग गुजर गए दीन में। सलफ में से एक शख्स को एक आदमी मिला तो उसने उसके साथ बदकलामी की और बुरा भला कहा। उन्होंने इस आदमी से कहा ठहरिए यहाँ तक कि मैं घर से होकर तुम्हारे पास आऊँ, पहले तो आप अपने ऊपर लें। आपका दरवाज़ा नॉक हुआ, आपने खोला, आगे से कोई ज़ुबान की तेज़ गुस्से में भरी खातून खड़ी है और आपको बुरा भला बातें सुनवाती हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में लोग कहते हैं सलवाते सुनाना। आप और मैं उस वक्त क्या करेंगे, और हमारा ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा और हमारी शुगर लेवल क्या होगी, ये हम देखते हैं। इन्होंने उसकी बातें सुनी, कहने लगे भाई ठहरो मैं अंदर से होके आता हूँ। चले गए अंदर, वह अपने घर में दाखिल हुए तो अल्लाह के लिए सजदा रेस हुए, इसके हजूर गिरिया जारी की और तौबा की और अपने रब की जाने पूरी दिल जमई से मुतवज्जे हुए, फिर इस आदमी की तरफ पलटे। समझ आए, उसको कुछ नहीं कहा, अंदर जाकर अल्लाह से बातचीत करके नफिल पढ़ के रोकर बाहर आए। उस आदमी ने पूछा माँ सनाता आपने अपने घर में क्या किया, यानी क्यों गए थे घर में? कहने लगे, इस जुमले को हाईलाइट कर लें, तुबतु इलल्लाहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी सल्लतका बिही अलैया। कहते मैंने अल्लाह ताला के हजूर इस गुनाह से तौबा की जिसकी बिना पर तुझे मुझ पर मुसल्लत किया गया। किसका इतना ज़र्फ है और किसका इतना हौसला है कि लोगों से गालियां सुनकर आके खुद को मलामत करे कि बिजम्बी। कल एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन से सुन रही है ये कोर्स में हमारे साथ, तो वो अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। पहले दिन जब हुआ तो वो अपने मुल्क में ही थी, उम्रे पे गई हुई है, तो वो उम्रे पे वहाँ से भी मेरे साथ मतलब मैसेजिंग में रहती हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। तो कल उनकी एक ऑडियो थी, तो कहने लगी कि जुम्मा था ये जो परसों जुम्मा गुजरा है, तो कह रही हम अपने होटल से जल्दी से निकल के भी आए और 10 बजे कह रही 10:10 पे हरम के दरवाजे पे थे, लेकिन इतना रश था कि मैं अंदर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और मेरी ख्वाहिश क्या होती है हमेशा कि मैं तो मताफ के अंदर बैठूं। कहती हैं इतना इज्तिहाम था कि कोई वे नहीं था, जिस डोर से गुजरे वहाँ से रास्ते बनते। कहती मुझे उस वक्त वही आपकी बात याद आई, बिजम्बी बिजम्बी। कहती मैंने अल्लाह को कहना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझे पता मेरा गुनाह, मैं देर से आई हूँ, मुझे जल्दी आना चाहिए था, तू मुझे माफ़ कर दे। कहती उसके बाद उस्ताज़ा मुझे नहीं पता कि मैं अंदर कैसे पहुँची हूँ, मैंने बिल्कुल हजरे अस्वद के पीछे नमाज पढ़ी। देखिए ये आपका अल्लाह से ताल्लुक है, वो है ना ज़ात, मैं क्यों आपको सुनाऊं कि आप उसको कहें। ये जो लोग कहते हैं ना फलां का वास्ता फलां के वसीले, इवन नबी सल्लम, मैं अपने और अल्लाह के बीच में नबी सल्लम को नहीं लाती, अल्लाह की कसम, ये मेरा अकीदा है, चाहे उठ के सारे उठ के चले जाएं, क्योंकि फ़ैनी करीब इज़ा फ़ैज़ा साला कई बात यन्नी फ़ैनी करीब। नबी ने भी तो खुद मांगा, नबी ने तो खुद अल्लाह को कहा। देखिए हजरत आदम की दुआ देखिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, सूरत अलराफ़ में आती है। जब पहले आदम और हव्वा जो पहले इंसान थे उनसे ख़ता हुई तो किसको बीच में रखा? कह सकते थे ना कि मोहम्मद के वास्ते और वसीले से बख्श दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस लोग बयान करते हैं, मैं इस वक्त उस बहस में नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात सुना रही हूँ कि कुरान क्या कहता है। अगर आदम और हव्वा ने ये कहा होता कि अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद के वास्ते वसीले हमारी तौबा कबूल कर ले, तो क्या अल्लाह ताला को ये बात लिखने में कोई आर थी? रब्बना कहने की बजाय रब्बी मोहम्मद ही आ जाता दुआ में, कुछ ना होता, रब्बी भी वसीलतिल मोहम्मद ना भी आता। बात समझिए, देखिए अक्ल से सोचे, मत सुनी सुनाई पे बात करें, हमारी आदत नहीं है लड़ना बहस करना, अक्ल को शऊर को झंझोरिए। रब बना हम दोनों के रब, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए मेरे रब, आप पूरी मसनून दुआएं खोल लीजिए, नबी सल्लम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी मेरा रब, पूरे नबियों की दुआएं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, यूनुस की दुआ, हजरत अय्यूब की दुआ देख लीजिए सूरत अंबिया में, ये सारी दुआएं हैं, अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर्राहिमीन, मैं हूं जालिम लेकिन तू बड़ा रहम वाला, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी मेरा रब, कौन कह रहा है, इब्राहिम कह रहे हैं, रब्बी मेरे रब तू मुझे सालेहीन में दे दे। हजरत जकरिया क्या कह रहे हैं, सूरत आले इमरान में पढ़ लें, सूरत मरियम में पढ़ लीजिए, यानी आप 20 नबियों की बातें पढ़ लें, हर एक में रब्बी, एक एक भी तो कुरान में आयत होती ना किसी एक नबी के नाते। चलिए आप हदीस की मसनून दुआएं 700 के करीब दुआएं, आप अभी ये अस्कार की बुक खोल के देखें 100 के करीब, तो इसमें आज हमारे इस सबक में कोई 10-15 दुआएं आ रही हैं जो मुसीबतें आने के बाद जो आ जाएं तो टले। हर दुआ में कोई एक दुआ ला के मुझे किसी किताब की दिखा दें हो सही हदीस से कि अल्लाह के नबी ने कुछ लफ्ज बोले अंदर कि फलां के वसीले, खुद ही कह दिया हो कि लोगों तुम मेरे वसीले वास्ते से मांगो, ये उम्मत को तोड़ा जा रहा है, इन बातों पर आपको क्या लगे? तो मैं तो अपने रब से मांगूंगी, नबी सल्लम ने भी तो अल्लाह से खुद मांगा, आपने कभी नहीं कहा रब्बे इब्राहिम, आपने कभी नहीं कहा कि रब्बे आदम रब्बे मूसा, रब्बी मेरा रब, तो मैं आपको बीच में क्यों लाऊं? मुझे अपने शौहर से कोई बात लेनी देनी है तो मैं आपसे क्यों कहूं, मेरा उनसे ताल्लुक है मैं खुद ले लूंगी, मुझे अपने माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए, मुझे किसी नाने मामू चचा खालू को कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद मांग लूंगी। वो नहीं डायरेक्ट मांगते अल्लाह से जिनका अपना ताल्लुक टूटा होता है। देखिए ना, माँ को नाराज किया हो बाप को तो फिर दूसरे को कहेंगे ना, आप मेरे अब्बू को कहें, खुद हस्बैंड से नाराज हैं या कोई बात की तो बच्चों को कहेंगे, जो अब्बू से कह दो पैसे दे दे, तो नाराजगी की बात है, ये गुस्से की बातें नहीं होती। तो यहां यही देखिए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आई कर लीजिए, वो कहते हैं कि तुमने मुझे तंग किया है, तुम पे मुसल्लत हुए, मैं अल्लाह से कह के आया हूं कि मेरा जो भी गुनाह था ना, जिसकी सजा में तुम मुझ पर मुसल्लत हुए हो, माफ कर दे। आज आप देखिए, आपको लगता है आपके घर में कोई जुल्म करता है आप पे? हो सकता है कुछ शौहर गुस्से वाले होते हैं, चीखने लग जाते हैं, बोलते हैं, कुछ बीवियां बदतमीज होती हैं, कोई चीखे, आप जाके मसल्ले पे खड़े हो जाए, क्या पड़ा है? कहना, मैंने अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफी मांगी है जिसकी वजह से आप मेरे पे मुसल्लत हुए। अगली दफा बंदा नहीं बोलेगा, ये बस राबते हैं, अल्लाह हमारे जोड़ दे। फिर इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम ने एक बहुत ही खूबसूरत इसमें एक उनका बयान है, कहते हैं कायनात में हकीकत में कोई शर है ही नहीं, सच्ची बात है, क्योंकि हर शर में खैर है, मगर गुनाहों और उनके असबाब की वजह से। लिखें ये जुमला, दुनिया में सबसे बड़ा शर, शर समझते ना, फितना, अजमाइश, जिसको आज आप कहते हैं जी फितनों का दौर है, कहते हैं सबसे बड़ा शर दुनिया में सिर्फ बंदे का गुनाह, और कोई शर ही कोई नहीं है। आज हम गुनाह छोड़ें, देखिए दुनिया में अस फरिश्तों का सलाम आए, अल्लाह मुसाफा करवाए फरिश्तों से अगर हम गुनाह ना करें, ये हमारे गुनाहों की सजा है सारी दुनिया में जो फैली हुई है, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए।